Inshallah. रिफ्रेशिंग हो गई, ब्रेक थोड़ी सी?
जी
अल्हम्दुलिल्लाह. सबको कुछ खाने को मिल गया?
जी.
क्या था वहाँ पर? कोरमा,
बिरयानी
और
चाय. अल्लाह ताला जो भी चोक लाके लेके बना के अल्लाह ताला उनको क्या दुआ देंगे हम लोगों को? इंशाल्लाह देखिएगा वो फिर दूसरे दिन लाएंगे. पहले सबको कल की बेक सेल याद है? कल इंशाल्लाह बेक सेल है हमारे पास. हमारे एक नए मेहमान भी आए हुए हैं क्लास में, तो बता दें कल हमारे पास बेक सेल है, खूब सारी चीजें होंगी इंशाल्लाह. हाँ कल. चलिए ठीक है, चलिए से सेटल हो जाइए ताकि हम लोग बता दें फर्दर डिले अपना सेशन शुरू करते हैं. रेडी है आप लोग सर?
आप क्या सीखा पूछे?
पहले हाफ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा? जो हो गया हो गया. किसके ऊपर सबसे ज्यादा रहम करना है? कभी आशा किस एंगल से सोचा था? नहीं सोचा था ना. अपने ऊपर रहम करना है इंशाल्लाह. अपने ऊपर हेल्प करने का मकसद मतलब क्या होता है?
अपने किसी को माफ कर देना, सबसे पहले अपने ऊपर रहम करना.
बिल्कुल. और
अपने ऊपर रहम करने का मतलब है कि हम अपनी आफत संवार रहे
हैं. जी बिल्कुल.
और जो भी नेकी कर रहे हैं वो हमारे लिए, ये पॉइंट लेके करें कि वो हमारे लिए मतलब है.
यही अपने ऊपर रहम करना है कि हमें अपने लिए सोचना है. बिल्कुल. और आपने क्या करा था अपने एम्प्लॉई को माफ करके? अपने ऊपर रहम किया था.
वो असल में मेरी एम्प्लॉई जो है वो बहुत बहुत काम हो गया था, तो उसको मैंने कोई काम बोला तो वो मुझे चीख करके उसने ना बोला, तो है ना अगर तो फिर मैंने कहा अब तो मैं इससे बात नहीं करूँगी. तो खैर है ना, एक हफ्ते तक उससे बात नहीं किया, मगर मैंने क्लास में फिर आपको दर गुजर कर ना एक वो पढ़ा था दुआ पढ़ी, उसके बाद मुझे इतना खौफ आया कि उसको मैंने जाके गले लगाया. मैंने कहा आई एम सो सॉरी, अगर मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उस वक्त तक नहीं है ना तुमसे वो कर नहीं सकती हूँ. मेरा अल्लाह अगर पसंद नहीं कर रहा है तो मैं ना तुमसे बात करना मेरा ज़रूरी है, तो मेरे अल्लाह पसंद नहीं करता. तो वो इतना वो भी रोने लगी, तो कहने लगी कि नहीं चलो फिर
माफ़ करने का गुजर करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको? जब नेक्स्ट टाइम माफ़ करना मुश्किल लगे तो क्या सोचना है? मेरा अपना फ़ायदा है, मुझे अपने कंधे हल्के करने.
जी हौसबिल्ला इब्न शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ब्रेक के दौरान तीन चीज़ें मेरे जहन में अल्लाह ने डाल दी, उसी के मुतल्लिक जो आपका टॉपिक था. मैंने सोचा कि इससे मिलते जुलते टॉपिक आगे पीछे आएंगे, तो चूंकि आज बात हो रही है तो इस पर करते रहें. एक सवाल लिखिए कि माफ़ करना कब आसान होता? नंबर एक, जब आप तकदीर पर राज़ी होंगे. जब आपको अख्लाक का टॉपिक शुरू किया था तो आप ये बात बताई थी कि इमाम इब्ने कय्यम कहते हैं कि अख्लाक जो है ये ईमान के साथ जुड़ा हुआ है. अगर आपकी रूट्स में ईमान बिल कदर है कि मेरी तकदीर का हर अच्छा और बुरा फ़ैसला अल्लाह के हाथ में, बिल कदरी खैरी ही व शर्री ही मिन अल्लाह, तो फिर आपको दूसरे को माफ़ करना बहुत आसान होगा. आप कहेंगे कि ये मेरी तकदीर का फ़ैसला था, अल्लाह ने तो लिख ही दिया था तो मुझे तो मानना है. एक बात. दूसरी बात, क़ुरान की ये बात, वमा साबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बीमा कसबत अईदीकुम. सूरत शुरा में भी और बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ आपको मिलती है कि तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुँचती है वो तुम्हारे अपने ही किसी गुना या गलती की सज़ा होती है. जब आपको कोई सताए या किसी की बात आपको बुरी लगे तो ये सोच लीजिए कि ये कोई मेरी ही खता होगी, कोई मेरा ही गुना होगा. तीसरी बात ये सोच लीजिए कि अगर दुनिया में ये छोटी सी तकलीफ़ मुझे पहुंची और इसके बदले में मुझे आखरत में बहुत बड़े दर्जे मिल गए तो फिर आपको पुरसकून ज़िंदगी मिलेगी. आपने वो हदीस सुनी होगी कि एक दो लोग जन्नत से बाहर हैं और एक दूसरे से कुछ मुतालबे कर रहे हैं. वो कह रहे हैं मुझे ये दो, तुमने मेरा हक मारा था. वो कह रहे नहीं. और इतने में अल्लाह ताला उनको बुलाकर दूर एक महल दिखाकर पूछेंगे लेना चाहते हो? वो कहेगा जी इसीलिए तो इससे नेकियां मांग रहा हूँ, दूसरा कहेगा इसीलिए तो मैं दे नहीं रहा अपनी इसको नेकिया, क्योंकि क्यामत के दिन तो सारे मामले जो हैं वो माल माल के हों या गालियों के हों या जुबान के हों, हकूक की कमी बेशियों के हों, वो नेकियों में जाएंगे। तो आखिर वो कहेगा मैं भी इसीलिए नहीं दे रहा, तो फिर अल्लाह ताला उसको कहेंगे तुम इसको माफ़ कर दो और तुम्हें इसके बदले में माफ़ करने की वजह से वो मिल जाएगा। वो कहेगा अच्छा तो फिर मैंने क्या करनी है नेकियां। या ऐसे ही कि आपको फ्री में एक चीज़ मिल गई तो आपने पैसे क्या करने हैं लेकर, जिसके लिए आप कोशिश में थे। और चूंकि दूसरे के ऊपर वो हक था उसका, तो वो रुका हुआ था, जब उसने माफ कर दिया तो उसको क्लियरेंस मिल गई। और फरमाए दोनों हाथों में हाथ डालकर जन्नत की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। क्या पता चला कि माफी के साथ दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और फिर एक बात याद रखिएगा, जुबान छोटी दिल बड़ा। अभी डिस्कशन में मैं आपकी बातें सुन रही थी ना कि है बड़ा मुश्किल दिल पे हाथ रखना, होता है दिल बड़ा करते जाइए, जुबान छोटी करते जाएं, माफ़ी और दूसरी चीज़ें बहुत सारी आसान हो जाएंगी। और ज़िंदगी में जीने का यही असूल है कि आप लोगों की गलतियों और ख़ताओं को जब देखें तो ये सोचें कि मेरा रब मेरी कितनी माफ़ करता होगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारे पास खैर ख्वाही का, अनुस्ख कहते हैं उसको। हदीस में आता है अद्दीनु अन्नसीहा, दो लफ्ज़ों की हदीस है, बोले अद्दीनु अन्नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी किसकी खैर ख्वाही, वली मन, तो आपने फिर तरतीब से बातें ऊपर से पेश की अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मुसलमान जो हुक्मरान है उनके लिए, और उसके बाद फिर आम लोगों के लिए। यानी मोमिन सरासर खैर ख्वाह शख्स होता है, हकूमत से, अल्लाह से, नबी से, इंसानों से खैर ख्वाही का मामला करता है। यानी आप दूसरे को लेट डाउन नहीं करते, आपके अंदर ये चीज़ें आती जाएंगी तो भी आप दूसरों के लिए खूबसूरत से खूबसूरत बनते जाएंगे। तो ज़िंदगी में करना क्या है, खैर ख्वाही की ख्वाहिश रखिए, कोशिश रखें। और जितना ज़्यादा आप किसी के लिए खैर ख्वाह होंगे, आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी खैर ख्वाही क्या है इंसानियत की। चलिए सवाल बदलती हूँ, दुनिया में सबसे बड़े खैर ख्वाह कौन गुजरे हैं इंसान के नाम, इंसानियत में? अंबिया कराम। और अंबिया कराम ने क्या किया, खैर ख्वाही की। और खैर ख्वाही का अमली इजहार कैसे था, लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया, बुराइयों से रोका, नेकियों का हुक्म दिया। हज़रत शुएब का एक जुमला सूरत अलराफ 68, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारे लिए अमानतदार खैर ख्वाह हूँ। इसी तरह आराफ 62 में भी यही बात है, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अनसखु लकुम व अलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और जो हदीस मैंने आपको इंट्रो में बोली, ये मुस्लिम की रिवायत है, किताबुल ईमान 196, तमीम दारी से है। अद्दीन व नसीहा कुलना लीमन قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، सब आगे इसी में कहा दीन तो खैर ख्वाही का नाम है, अल्लाह की, उसकी किताब की, उसके रसूल, मुसलमानों के इमाम और इनके अवामुन्नास की। तो मोमिन सरापा खैर होता है। असल में हमारे यहाँ ये लफ्ज़ बदनाम बहुत है, नासिख, बड़े नासिख बनते हैं, और ख़ास तौर पर उर्दू शायरी में बड़ा बदनाम है। नासिख कहते हैं नसीहतें करने वाले को, और नसीहत किसी को अच्छी नहीं लगती, हालांकि नासिख खैर ख्वाह होता है। वेल विशर कह लीजिए, आई एम योर वेल विशर, ये लफ्ज़ तो फिर भी अच्छा लगता है। और याद रखिए कि लोगों की खैर ख्वाही का अगर अमली इजहार करना है तो सूरह सही मुस्लिम 177 को नोट कर लीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से जो कोई बुराई को देखे तो इसे अपने हाथ से रोके, अगर इसकी ताकत ना हो तो ज़ुबान से, और अगर इसकी भी ताकत ना रखता हो तो अपने इसे दिल में बुरा जाने। और ये सबसे कम दर्जे का ईमान है, यानी दूसरों की बुराइयों पे कुड़ना ना, उसको रोकने की कोशिश ना करना, उससे उसको निकालने की कोशिश ना करना। अब क्या करें, अब रिश्तेदारी है, क्या करें, दोस्त हैं, माइंड कर जाएंगे, बुरा मानेंगे और ये और वो होगा। तो याद रखिए कि आपने अपना ताल्लुक तो बचा लिया, उसको डाल दिया। कुछ लोग सवाल करते हैं, हमारे फलां रिश्तेदार हैं, उनका बिज़नेस ठीक नहीं है, अब उन्होंने हमें दावत पे बुलाया कि हम चले जाएं, कोई तोहफ़ा दिया है तो कबूल कर ले। अक्सर ये सवाल होता है, फलां का जी गैस स्टेशन है, फलां के आप सभी जानते हैं जो भी नाम है, फलां का ये काम है। तो मैं उनसे एक सवाल करती हूँ कि ये सवाल आज क्यों पूछा आपने? सिर्फ इसलिए ना कि उन्होंने आपको दावत पर बुला लिया, तो आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? आपके अजीज़ दोस्त रिश्तेदार प्यारे आपके सामने ही गलत काम कर रहे हैं और खा रहे हैं और पी रहे हैं और आप कभी नहीं रोकते। आज आपको खिलाने की दावत दी तो आप शुरू हो गए, तो अगर आप वाकई खैर ख्वाह हैं तो आप उनको भी समझाएंगे। किसी को बुरा काम करता देखेंगे तो आपके दिल में उसकी खैर ख्वाही होगी। और मोमिन कौन होता है? जो अपने दोस्त के अपने भाई के लिए क्या पसंद करता है? जी नोट कीजिए, सही बुखारी हदीस नंबर 13 किताबुल ईमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिह। तुम में कोई शख्स ईमान नहीं लाता जब तक अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो अपने नफ्स के लिए चाहता है। फिर इसी तरह बुखारी ही की रिवायत है 57, आपने फरमाया बायातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जरीर कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से बैत कर ली। किस बात पर? अला इकामिस्सलाह, नमाज कायम करने पे, व इताई ज़का और ज़कात देने पे, व नुस्खी लिकुल्ली मुस्लिम और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करूँगा। मुसलमान खैर ख्वाह, आज तो रेड़ी वाले के साथ खैर ख्वाही कोई नहीं करता, टांगे रिक्शे वाले के साथ कोई नहीं खैर ख्वाही करता। बड़े बड़े नामों पे हज़ारों की चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन गरीब छोटे छोटे दुकानदारों और रेड़ी और ठेले वालों के ऊपर कोई खैर ख्वाही नहीं करता। याद रखिए कि एक इंसान किसी के साथ खैरख्वाही करेगा ना तो उसका अजर उसको खुद ही मिलेगा। कैसे? सही मुस्लिम 4899 अबू मसूद अल अंसारी से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से एक शख्स आया, कहने लगा मेरा जानवर मर गया है, मुझे सवारी दीजिए। आपने फरमाया मेरे पास सवारी नहीं है। तो एक शख्स बोला अल्लाह के नबी क्या मैं इसको किसी ऐसे शख्स का पता बता दूँ जिसके पास सवारी है और वो इसको दे दे, उसकी सिफारिश कर दी ना। तो आपने फरमाया हाँ, मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अजरी फाइलिही, जो किसी को नेकी की राह बताए इसको इतना ही सवाब है जितना नेकी करने वाले को, कि यानी अच्छी बात है। तो खैर ख्वाही क्या है कि आपको कोई एक चीज़ अच्छी मिली, अच्छी खैर की चीज़ है तो वो दूसरों को भी बताएं। सेल लगी हो तो हम दोस्तों को बताते हैं, खैर ख्वाही है कि नहीं? बाय वन गेट वन फ्री, एक उनके लिए भी ले लिया, वहीं खड़े होकर फ़ोन कर रहे हैं तुम्हारी ले लूं, तुम्हारे लिए उठा लूं, खैर ख्वाही है ना? तो अब कौन सी खैर ख्वाही करने की और ज़रूरत है? मैं एक सवाल करती हूं अक्सर, आप अपनी दोस्तों को कितना जानते हैं? आपसे वो कितना प्यार करती हैं? चंद सवाल कीजिए खुद से, आपकी खातिर वो क्या कर सकते हैं? ठीक है वो आसमान से सितारे तो नहीं तोड़ेंगी और दूध की दहरे भी नहीं खोदेंगी, क्या आपकी खैर ख्वाही की का अमली सबूत वो ये दे सकती हैं कि आप उनको कहें कि एक चीज़ बड़ी अच्छी है, आप भी सीखिए, आप भी सुनिए? कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आपकी दोस्तों का आप पे ट्रस्ट है, आपकी इस बात को सुनकर वो कुरान क्लास में आ जाएंगी? जैसे आज एक सिस्टर आई है ना, एक सिस्टर के साथ आपको जो आपको लेकर आई हूँ उन पर गुस्सा तो नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही लग रहा है ना? देखिए आप ये अपनी दोस्त को आज लेकर आई, ये रास्ता खुल गया, अल्लाह ने इनके कानों में बात डाल दी, इनको ये जगह माहौल दिख गया, आगे अल्लाह इनके लिए आसान करेगा। रोज़ किसी को नहीं कहना पड़ेगा, ये खुद ही कह देंगे कि मुझे जाना है, नहीं जाना होगा तो भी बता देंगे, लेकिन आपका मेरा फ़र्ज़ है एक दफ़ा कम अज़ कम। ख़ासतौर पर आप थर्सडे के लिए अपनी दोस्तों को भी बुलाएं, हमें तो मौका ही चाहिए होता है ना किसी को बुलाने के। लोग कहते हैं क्यों बुलाएं दोस्तों को, कोई तकमील हो रही है, कोई शुरू हो रहा है, कोई बिस्मिल्लाह है, कोई आमीन है, आप बीच में भी बुला सकते हैं। लोग कहते हैं जो कोई ख़ास बात है, ख़ास बात है, रोज़ ख़ास बात होती है। आप मुझे बताएं कौन सा दिन आपने कुरान की क्लास में देखा जो ख़ास नहीं होता? कोई एक आयत है जो ख़ास नहीं है? सब खैर। तो बेहतरीन खैर ख्वाही क्या है? जो आपको अपने लिए पसंद है वो उनको भी दिखाइए, उन तक भी ये बात पहुँचाइए। फिर मुस्लिम की रिवायत 6671 अबू हुरैरा से कि अल्लाह के नबी ने फरमाया बेशक मैंने जन्नत में एक शख्स को मज़े करते हुए देखा। सोचिए ज़रा, राई तो रजुलन तकल्लबु फिल जन्ना, मैंने उसको मज़े करते हुए देखा जिसने दुनिया में राह में आने वाले एक दरख्त को इसलिए काट दिया था कि वो लोगों की अजियत का बायस था। खैर ख्वाही और खैरख्वाही की एक फॉर्म देखिएगा जो हम ख्वातीन को तो बहुत ही समझने की ज़रूरत है, और रिवायत है बहकी जिल्द 8 है 16685। आपने फरमाया मन नसर अखाहु बिज़हरिल ग़ैबी नसरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जिसने अपने भाई की मदद की इसकी पीठ पीछे, अल्लाह इसको दुनिया और आखिरत में इसकी अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी मदद करेगा। आपके दोस्त या आपकी सहेली के बारे में कोई गलत बात कर रहा और आप वो वहाँ मौजूद नहीं है, आप उसको डिफेंड करती हैं, आप कहते अच्छा मुझे भी बताओ और क्या है उसमें, नहीं आप कहते नहीं मैं नहीं समझती वो ऐसी हैं, आप गलत कह रहे हैं, वहीं खड़े खड़े फ़ोन मिलाइए, सुने ये आपके बारे में कुछ बात हो रही है, ये ठीक है कि नहीं है। यानी ऐसी जगह आप उसकी मदद करें जहाँ वो खुद नहीं है, अल्लाह उसके बदले में आपकी दुनिया और आखिरत में मदद करेगा। और याद रखिए दूसरों के खैर ख्वाहों को दुनिया में भी वो मिलता है जो उनके पास नहीं था, और आखिरत में तो मिलेगा। बड़ी प्यारी हदीस है सही मुस्लिम 6853। अबू हुरैरा रावी हैं, मन नफ्फसा मोमिनिन कुरबत मिन कुरबित दुनिया, जो किसी मोमिन पर से दुनिया की सख्ती दूर करेगा तो अल्लाह ताला इस पर से आखरत की सख्तियों में से दूर करेगा। और जो शख्स तंग दस्त को मोहलत देगा यानी कर्ज के लिए तकाजा करने में और सख्ती में मोहलत मांगेगा तो अल्लाह ताला इस पर दुनिया और आखरत में आसानी करेगा। और जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब ढांपेगा तो अल्लाह इसका ऐब दुनिया और आखरत में ढांप देगा, और अल्लाह बंदे की मदद में होता है। ये जुमला लिख लें, अल्लाह अपने बंदे की मदद में होता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है। समझ आए? ये है वजह दूसरों से ज़्यादा अपने काम अच्छे कराने के। आप अपने काम खुद करेंगे तो कैसे करेंगे, और अगर आपके काम अल्लाह करेगा तो कैसे करेगा और कैसे करवाएगा? तो यकीन कीजिए दूसरों के खैरख्वाह बनते जाइए, अल्लाह उसका रसूल उसके फरिश्ते आपके खैरख्वाह बनते जाएंगे, और फिर आप हकीकत में दुनिया में मोहब्बतें बांटेंगे। आपकी ज़िंदगी का खुलासा ये हो जाएगा कि आपका वजूद इंसानियत के लिए खैर और रहमत का ज़रिया बन जाएगा, और जितना ज़्यादा आप अपने आप में रहेंगे लिए दिए रहेंगे, मैं क्यों कहूँ, तो आज मरे कल दूसरा दिन कोई आपको याद नहीं करेगा। खैरख्वाह बन के जिए, हर एक की खैरख्वाही करें और तरीके से करें, यह भी नहीं कि अगले के निजी मामलात में दखल देने लग जाएं। और सबसे बड़ी खैरख्वाही अच्छी नसीहत है, तभी तो फिर नासिख नसीहत करने वाले को कहते हैं ना, लफ्ज नसीहत भी नुसुख इसी से ही है ना। तो कभी भी किसी की गलती पे इसलिए ना खामोश रहें कि ये बुरा मानेगा, क़यामत के दिन तो वो बहुत ही बुरा मानेगा जब उसको ये पता चलेगा कि आपको पता था लेकिन इसने आपकी गलती की इस्लाह नहीं की। तो अल्लाह ताला आपको मुझे अपने लिए खैरख्वाह बनाए। अपने लिए खैरख्वाही का बेहतरीन इजहार क्या है कि इस जिस्म को आग का ईंधन बनने से बचा ले। और फमन ज़ुख़्ज़िहा नारी बौद खिलल जन्नत वक़द फास, जो जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही है कामयाब। आपकी मेरी अपने आप से खैर ख्वाही क्या है कि इसको एक लम्हे के लिए भी जहन्नुम का ईंधन ना बनने दें। याद रखिए बहुत रोना आएगा हमें अपने ऊपर, गुस्सा आएगा अपने ऊपर जब हमारे इस जिस्म को आग में जलना पड़ेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक औरत आई, बड़े हसीन जिस्म की थी, बुरे कामों में पड़ चुकी थी। कहने लगी कि मेरे लिए कोई तौबा है, मेरे साथ ये भी है वो भी है। उन्होंने उसके कबीरा गुनाहों पर नज़र रखते हुए कह दिया तेरे लिए तो कोई रास्ता नहीं है, तू तो इतनी दफ़ा जिना कर चुकी और दिस एंड दैट। वो औरत वहाँ से ज़रा साइड पे हुई, अपने आप को मुखातिब करके कहती है तुफ है जिस्म तुझ पे कि तू आग में जलेगा, यानी कि तुझे अल्लाह ने बनाया इतना जिस्म अच्छा दिया सब दिया तो तूने इसको गुनाहों का आदि बनाया। रोती भी वहाँ से चली गई। फजर के बाद सब सहाबा अल्लाह के नबी से जब मिलते थे तो अपनी बातें शेयर करते थे। अबू हुरैरा ने यह बात शेयर कर दी कि रात एक औरत ऐसी वैसी आई और ये हुआ, तो अल्लाह के नबी ने जब ये बात सुनी तो आपने कहा कि अबू हुरैरा तूने उसको मायूस कर दिया, तौबा तो गुनाहों को माफ़ करवा देती है। तो अबू हुरैरा गलियों में फिरते हुए उस औरत को ढूंढ रहे थे कि मैंने तुझे मायूस किया, मैं तुझे खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अल्लाह तेरे इस गुनाह को भी माफ़ कर देगा। ये खैरख्वाही होती है। और हमें इशारे, किसी की लाइटें जली हैं तो जलती रहे, मैंने कौन सा बिल देना है, किसी के पानी गिर रहा है तो गिरने दीजिए, किसी का बच्चा खराबियाँ कर रहा है तो करने दीजिए, ऐसा मोमिन नहीं होता। मोमिन हमेशा दूसरे की जगह पे अपने आप को लेता है। आपने किसी का घर किराए पे लिया, तोड़ो फोड़ो अपना थोड़ी है, जाएंगे तो ये भी करके जाएंगे, यहाँ तो कोई करने नहीं देता ना, वरना हम कसर तो यहाँ भी ना छोड़ें। बिलीव मी, किसी ने कहा कि एक शहर कोई थे तो कई साल इधर रहे, सुनिएगा बहुत जुल्म की बात बताने लगी हूँ, तो किसी भी तरह उनको यहाँ से जाने के ऑर्डर आ गए, डेपुटेशन थी, उनको फ़ौरन निकलना है। दिन रात अंधों की तरह शॉपिंग कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स पे। किसी ने पूछा कि इतनी शॉपिंग करोगे क्या, कहा करते रहे, हमने तो इधर से चले जाना है, खुद ही भेजते रहेंगे हमें बाद में बिल, ना कोई होगा ना देगा ना लेगा। और कहा कि क्यों भाई, ये काफिर है, इनको जितना मर्जी नुकसान पहुँचाओ। ये देखिए, ये मुसलमान ऐसे इस्लाम पे आए लोग, आपकी बातों पे फिर इसलिए वो इस्लाम कबूल करें। तो याद रखिए, खैर ख्वाही गैर मुस्लिम से भी है, और आपकी मेरी सबसे बड़ी खैर ख्वाही अपने नेबर्स के लिए क्या, उनको इस्लाम दीजिए, उनको इस्लाम दिखाइए। अल्लाह ताला बना हमें रखे, इसमें बहुत कुछ और भी आता है, पूरा दीन ही आ जाएगा कि अपने लिए जो पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए। लेकिन आगे चलते हैं, अलगिना। गिना क्या है? बेनियाजी से। अल्लाह ताला का नाम भी है गनी से। दौलतमंद को भी क्या कहते हैं? गिना क्या होता है कि असल में आपके से इतना माल आ गया कि अब आप अपनी ज़रूरियात से बेनियाज हैं। एक होता है हैंड टू माउथ, हर वक्त फिक्र ही लगी हुई है, किराए के पैसे आ गए हैं कि नहीं, अब बच्चों की फ़ीस जमा हो गई, अब ये जोड़ तोड़ करते हैं। लेकिन जो गनी हो जाता है ना, उसको भी फिक्र नहीं होती। और गनी कौन होता है? जैसे उस्मान गनी था। हमारे यहाँ दौलतमंद का तसव्वुर कुछ और है। हमारे यहाँ दौलतमंद भी गनी नहीं होता, बल्कि वो और ज़्यादा बड़े कर्ज़ों में फंस जाता है। तो गिना क्या है? बेनियासी, किसी दूसरे की चीज़ तरफ आंख उठा कर ना देखें। यहाँ असल में इसकी ये स्ट्रेस, ये चीज़ आप समझेंगे। देखिए, आप जब जहाँ जिस दुनिया में आपर में रहते हैं, इवन एक घर में पैदा होकर जाने वाली बहनें, हर एक का स्टेटस फ़र्क होगा। किसी का शौहर बिजनेसमैन है, तो किसी का जॉब होल्डर है, तो किसी को खूबसूरत मिलेगा, तो किसी को कुछ और मिलेगा। किसी के चार बेटे हैं, किसी का एक बच्चा भी नहीं है। तो अब इंसानों की इस दुनिया में जब आप रंग बिरंगी चीज़ें देखते हैं, तो कभी कभी फिर शैतान दिल में ये ख्याल डालने लगता है कि तुम्हें कम मिला। तकाबुल, कंपेरिज़न, ये गिना जो है ना, ये कंपेरिज़न ना करना। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सूरत तौहा 131, वला तमुद्दन्ना अइनैका इला मा मत्तअना बिही अज़्वाजन मिन्हुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनिया की ज़िंदगी की इस शान व शौकत को जो हमें इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। हम वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है, और तेरे रब का दिया हुआ रिस्क ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। क्या पता चला कि दुनिया की कोठियाँ, गाड़ियाँ, घर, बंगले, औलादें, उनकी एजुकेशन, बड़े बड़े स्लोगन्स आपकी निगाहों को हीरा ना करें। आप कारून की दौलत भी सामने पा लें तो आप उसकी तरफ नज़र ना उठाएं। और आप देखिए कि बास लोगों को एक क्रेविंग होती है लोगों की चीज़ों को देखने की और एडमायर करने की और उनका दिमाग ख़राब करने की, ऐसे लग रहे। और ये सिर्फ चंद जुमले सुनने के लिए लोग हज़ारों खर्च करते हैं। आप इमेजिनेशन में लाइए, कोई बहुत पौश गैदरिंग है, बड़े से किसी होटल में कोई रिसेप्शन है, और हर औरत मर्द एक से एक बढ़ चढ़ कर वहाँ पहुँच रहा है, और आने के बाद हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो ठीक है, कोई तारीफ ना करे, एक लफ्ज़ ना बोले, कुछ ना बोले। एक तरफ ये, और दूसरा जो आए, क्या लग रहे हैं, गज़ब की हैं, प्यार की, कहाँ से लिया, किस से लिया। मुझे बताइए कि पहली सूरत होगी तो क्या अगली शादी में जाने से पहले कोई उतना बने ठने का जितना पहली में हुआ? इवन दे नोटिस दैट, दे डिडंट नोटिस दैट। आपकी किसी चीज़ को, ये मैं दुनियादारी की बात बता रही हूँ, कोई नोटिस ही नहीं करता, और दूसरी तरफ है कि कोई नोटिस करें। ये खर्चा पानी पैसे की तरह, जो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है ना, ये सिर्फ इन कमेंट्स के लिए। आपने शादी की, अपने बच्चे की, आपने 1000 लोगों को बुलाया और 20 डिशें रखी और $100 पर हेड खर्चा आपको आया, एक बंदा भी जाते जाते आपकी उस शादी की, खाने की, रिसेप्शन की, हॉल की, टेबलों की, सेंटर पीसेस की तारीफ नहीं करके गया, अगली शादी में करेंगे आप इतना खर्चा? ये तारीफ़ें करना छोड़ दें। यह आज मैं आपको नसीहत करूँगी। फर्स्ट स्टेप अपनी ज़िंदगी का ये बनाइए लोगों को, अपनी दोस्तों को, बातों को दिखाने का, कोई ऐसी चीज़ ख़ास तौर पे जिसमें गुनाह भी हो, हराम भी हो, नुमाइश भी हो, بے حیائی بھی ہو اس کی تعریفیں چھوڑ دیں. میں نے ایک پرسنل ایسا ایکسپیرینس کیا تھا, وہی اس وقت بھی یاد ہے, بہت پہلے کی بات ہے. کسی شادی میں ایسی جگہ پہ انوائٹیڈ تھے اور کسی تعلق کی وجہ سے, کہ گناہ کچھ نہیں تھا وہاں, الحمدللہ سیگریگیٹڈ تھا, لیکن ایک سے ایک شہر کی بڑے سے بڑے لوگ آ رہے تھے, اسی طرح لوگ آ رہے تھے اور انہوں نے ہمیں بھی بٹھایا بڑی اچھی طریقے سے اور آ رہے ہیں تو ریسپشن پہ. یقین کریں کہ ایک عورت لڑکی ینگ اندر آئی اور دور سے میں اس کا جو حلیہ دیکھا تو میرا جیسے دل میں ایک ہوک نہیں اٹھتی کہ شاید یہ نائٹ سوٹ میں آ گئی ہے یا یہ کوئی کپڑے ہیں جو پہننے والے. اس کو دیکھ کر تو مجھے دکھ سو ہونا تھا ہوا. جو ہی وہ اندر آئی ہیں اور ریسپشن پہ جو دو چار لوگ کھڑے تھے اس کو دیکھ کے غضب کی لگ رہی ہیں, پیاری لگ رہی, مجھے اس بات پہ اور رنج ہوا. مجھے اس کے اچھ برا اچھ جو بھی کپڑے تھے, بے حیا کے منافی کپڑے تھے, ان کو دیکھ کر جو غصہ آیا وہ کم تھا. جنہوں نے کھڑے ہو کے منہ بھر بھر کے تعریف کی مجھے, ان پہ غصہ آیا. میں نے کہا کاش یہ نہ بولتے تو شاید وہ گلٹ میں چلی جاتی کہ میں نے کچھ ٹھیک نہیں پہنا تو غلط چیزوں کی تعریف چھوڑ دیں. میں کھل کے بات کروں, میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں کھل کے بات کرنا پسند کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کے سامنے. وجہ کہہ کے اصل میں تو آپ ہی کی اصلاح مقصود ہے نا, باقیوں کا ہم نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہوا, ذمہ تو آپ کا بھی نہیں ہے. لیکن کوئی گناہ کا کام, مثلاً آپ کو یقین ہے, کوئی خود بتا دے, کسی دوسرے کی باتوں پہ نہ رہے, مت تجسس کرے, کسی نے گھر لیا ہے ناجائز طریقے سے لیا ہے, اسلام کے طریقے سے نہیں لیا, ٹھیک ہے, آپ کو وہ خود بتا چکا ہے, کبھی اس گھر کی تعریف نہ کریں. ہاؤس وارمنگ پارٹیز پہ چپ رہی ہے, پھر بڑا گھر, پھر کھول کھول کے دکھا رہے ہیں یہ جکوزی ہے یہ وہ ہے, انٹرسٹ ہی نہ لے, نظر بھر کا نہ دیکھیں. اللہ کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ لا تمدن آئی نہیں, لا تمدن نہ کہ مدہ کیا تھا, یوں مد کیا مد اصلی, یہاں کے یوں لمبی کرتے ہیں, یوں گاڑی جاتی یوں اتنی لمبی گاڑی, وہ جب تک گاڑی نظروں سے گزر نہیں جاتی. اور میں نے یہ بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا تھا, ایک مسجد سے ہم نکلے تھے تو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں کھڑی, مجھے کیا پتا کہ کیسی گاڑی کون سی ہوتی ہے, تو ایک اور ساتھی تھی وہ نکلی تو ایک گاڑی ہماری گاڑی کے آگے تھی, مجھے تب تک نہیں پتا تھا کہ ہماری گاڑی کے آگے کون سی گاڑی ہے تاکہ میں اس پہ بھی خوش ہوتی. تو بعد میں جب وہ نکلی تو میں نے کہا ایکسکیوز می یہ آپ لوگوں کی گاڑی ہے, کہتی تھی کاش یہ ہماری ہوتی. اس نے اتنی لمبی ہاں بھری, میں نے کہا کیوں خیر ہے, کہتی آپ کو نہیں پتا یہ گاڑی کتنے کی ہے, میں کہا مجھے نہیں پتا ورنہ میں خوش ہوتی, میری گاڑی کے پیچھے اتنی مہنگی گاڑی کھڑی ہے. ہاں یاد رکھیے یہ لمبا کرنا, لمبی کہانی ہے. دلہن نے یہ پہنا ہوا تھا, دولہا کو دیکھو, زیور دیکھو, کھانا دیکھا, پھر گھر آ کے آتا تھا گھنٹہ بیٹھ کے سجتی ہیں محفلیں, کیا تھا کیا کھایا, اسٹیج کیسا تھا, چھوڑ دیجیے ان چیزوں کو, آپ کو مجھے نہیں سجتا. لوگوں اچھا دیکھ کے خوشی ہوتی ہے, میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں, میں کسی کو اچھے کپڑوں میں دیکھوں, اچھے حال میں دیکھوں, اچھا گھر, میں خوش ہوتی ہوں, دیٹس اٹ. اس کے آگے میں نہیں سوچتی کہاں سے آیا, کس نے خریدا, کس کے پیسوں کے, بس مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مسلمان کو بھی اچھا گھر دیا ہوا, اب میں کیوں پوچھوں کہاں سے آیا کدھر سے آیا. لیکن تعریفیں نہ کریں, منہ بھر کے نہ کریں, بہت بھی دل کرے نا کسی کی اچھی واقعی جائز چیز ہے تو میں کہتی ہوں اللہ آپ کو جنت میں اس سے بڑھا دے, یعنی اس کی نظریں جنت پہ ڈال دیں, اللہ آپ کو جنت میں اس سے اچھا گھر دے, اللہ آپ کو جنت میں اس سے اچھے بچے دے, اللہ آپ کو اور بھی اچھے لباس دے. اور دعائیں پڑھیے, البس جدیدن عش حمیدن مت شہیدن. آج کے بعد اگر آپ تعریفیں کرنے کے بجائے کپڑوں کی دعائیں دینا شروع کر دیں تو ضرور آپ کی دوستیں سوچیں گی کہ اس کا ٹیسٹ کچھ چینج ہو گیا. لیکن غلط چیز کی تعریف تو بہرحال بالکل نہیں کرنی, پھر کہاں سے لیا, پھر اگلے کو جھوٹ بولنے پہ مائل کرتے ہیں, پھر کتنے کا لیا اور دوسرا جھوٹ, سیل میں لیا کہ اصل میں لیا, ریئل پرائز کی تھی کہ نسخے. اللہ کے بندو ریسرچ ادھر ہی کرنی ہے ساری, سارا کیوریسٹی کا مادہ وہ تم نے اسی کے لیے رکھا ہے, ہم تبھی تو ریسرچ میں آج پیچھے, ہم اسی میں کرتے رہتے ہیں کہاں سے ملتا ہے. اور کھانا کھائیں گے تو کھانے پہ باتیں, کہاں سے لیا, کیا بنایا, کیسے ملتا ہے, اس میں کیا ڈالا, وہ بھی ایک چیز چھپا ہی لیتے ہیں جو سب سے ٹیسٹی ہوتی ہے تاکہ آپ کا ویسا نہ بن جائے, آپ کے نمبر اتنے آ جائے جتنے ان کے آ گئے اللہ کی پناہ. میں کبھی سوچتی ہوں بیٹھ کے کہ انسان کیا گڈی گڈے کا کھیل کھیل رہا ہے, بڑا مقصد نہیں ہے. کھائیے خوش کیجئے دعا ہو جائے ختم, پہنیے پہنائیے پہنے استعمال ہوا ختم, کبھی سوچ سے نہ پہنیے. اور یہ بھی اس میں بتا دو, بے نیاز ہو کر پہنے, اداؤں کے ساتھ پہننا, لوگوں کو دکھاوے کی نیت سے پہننا. مجھے کسی نے لندن میں یہ سوال کیا تھا, اسٹوڈنٹس ہیں وہ, کہتے یہ نہیں سمجھ آتا جو آپ کہتے ہیں کہ اپنے لیے پہنے, ہم تو ہمیشہ اس لیے پہنتے کہ دوسرے دیکھیں. اب یہ ایک سوال ہے آپ لوگوں کے سامنے, میرا بھی یہاں بات آ رہی ہے تو اب سمجھیے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں تین چیزیں نا, آرائش, زبائش, نمائش, وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں, آرائش جائز ہے, زبائش جائز ہے, نمائش نہیں جائز. एक तीसरा आज एंगल, चौथा एंगल देख लीजिए कि बहुत दफा मैं कोई खूबसूरत है तो उसको पता है कि मैं खूबसूरत हूँ और वो अदा के साथ बैठा है, कपड़े पहने ऐसे तो ऐसे चल कैसे रहे, जरा अच्छे कपड़ों वाली चाल तो नोट करें, अदाएं कितनी आ जाती हैं, और पर्स हाथ में पकड़ा है तो कैसे पकड़ा हुआ, दुपट्टा लिया हुआ तो कैसे अदब से लिया, ये अच्छा नहीं होता। आप खूबसूरत लगे लेकिन आपको फील ना हो कि मैं खूबसूरत हूँ, ये खूबसूरती है। तोते को नहीं पता कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, बर्ड्स कितने प्यारे होते हैं, कभी शीशा लेके देखते रहते हैं, और आज मुसीबत वो जो सेल्फी का कल्चर सारे दिन अपने आपको देखते रहते हैं, मैं कैसी लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ। और एक जगह थी, एक औरत थी तो दोस्त थी, तो दोस्त सामने आई ना तो उसके सामने कहती ठहरो ठहरो क्या, कहती मैं तुम्हारी आंखों में सर अपने आपको देख रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आपको तो पुतलियों में दिखता है आपको अपना इमेज, ठहर जाओ मैं ज़रा अपना देख लूँ। अब आप मुझे बताइए औरों को कहाँ देखेंगे, बेनियाज हो, अच्छा पहने तो बेनियाज हो जाए, तारीफ़ों के लिए मत पहने और मत तारीफ़ें करें एक दूसरे की, इसी से तो फिर तकाबुल और तकासुर और क्या कुछ आ जाता है, और फिर क्या लंबा हमारा एक मतलब कह लीजिए कि अखलाकी बुराइयों का सिलसिला शुरू होता है। क्यों पहने फिर, लोग कहते हैं दिखाना नहीं तो पहनना क्यों है, तो हदीसे नेमत, पहन के इस्तेमाल करके कपड़े पहन नमाज पढ़ेंगे तो अजर होगा, जिसने दी उसका सवाब होगा, कोई किसी ने दिया आपने उसको दिखा दिया वो खुश हो जाएगा, सुरूर उसके दिल में भर जाएगा, दैट सिटी से ज़्यादा नहीं है ये सब कुछ, इन्हीं में नहीं खो के रह जाए, ये अच्छी चीज़ें हैं लेकिन आपके अंदर। और याद रखिए जो बेनियाज होते हैं ना लोग उसके सामने बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और किसी के बारे में आपको शक पड़ जाए ना कि वो आपकी हर चीज़ पर नज़र रखेगा, या आपके घर आएंगी तो आपकी एक एक चीज़ उठा उठा के देखेंगी, आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। कोई ऐसी चीज़ें जो आप नहीं किसी को दिखाना बताना चाहते होंगे आप उसके सामने नहीं रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अखलाक का ये खूबसूरत मेयार है बेनियाज़ों। एक मुझे हज़रत अली का भी कॉल याद आ रहा है कि उन्होंने अल्लाह के नबी से कहा था कि अल्लाह के नबी मेरा दिल करता है सब मुझे पसंद करें, मेरे से खुश हों, मेरे से अच्छे रहें, यानी लोग मुझसे प्यार करें अपने लफ्ज़ों में। तो आपने यही बात कही थी कि फिर तू उन चीज़ों से बेनियाज हो जा जो लोगों के पास हैं तो लोग तुझे प्यार करेंगे। हम होते हम कहते नहीं, तोहफे दो, उनकी तारीफ़ें करो, उनसे बेतकल्लुफ़ी करो, नहीं। हज़रत अली को आपने क्या कहा कि जो लोगों के पास है ना उससे बेनियाज हो, जब लोग सोचेंगे ना कि आप नोटिस ही नहीं लेते तो लोग आपसे कंफर्टेबल फील करेंगे, और जब बहुत कनिंग निगाहों से ताड़ेंगे घूरेंगे देखेंगे तो लोग उससे बैड फील करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप बेनियाज होते जाएंगे ना हर चीज़ से, तारीफ़ों से बेनियाज हो जाएँ, एडमायर किया कि नहीं कैसे बेनियाज हो जाएँ, जब लेना अल्लाह से है, अल इखलास कान लिल्लाह फिल्लाह बिल्ला, है भी अल्लाह के लिए है भी उसी की तरफ, मांगना भी उससे ला मकसूद इल्लल्लाह ला मतलूब इल्लल्लाह, है ही कुछ नहीं चाहिए नहीं अल्लाह के सिवा, तो कर भी दे। और यकीन करिए होगा कब, इन सारी चीज़ों का जो आजकल हम पढ़ रहे हैं ना इसका आज आपको सिरा भी दे दूँ, लोगों के शहर से निकल जाए, लोगों को छोटा करते जाएँ, अल्लाह को बड़ा करते जाएँ। आप कर रहे हैं तारीफ तो कर ले, मेरा क्या जाएगा। मसलन आप देखिए कि मिसाल है किसी ने कहीं जाना होता है तो लोग कहते हैं हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बड़ा महंगा पर्स उठा के जाते हैं। अब ये सारी बातें हमारे कल्चर में हैं। अच्छा महंगा पर्स क्यों है जी, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, किसी ने मुझे एक दफ़ा देख भी लिया, आप एयरपोर्ट पे जा रही हैं, अच्छा इस आलू लिए में, मैंने कहा क्यों, नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता ये जूता ये कपड़े, मैंने कहा मेरी बात सुने, पहली बात है जो मुझे छोड़ने जा रहे हैं मुझे रोज़ देखते हैं, इन्हीं कपड़ों में होती हूँ बाहर, ठीक है। दूसरी बात है जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ जाऊँगी तो रात हुई होगी, मैंने जाके सो जाना है और मैं अगले दिन उनको अच्छे कपड़े पहन के दिखा दूंगी, कोई बात नहीं, मैं क्यों अटकूँ। रह गई बात रास्ता, अब आप सोचिए सफ़र, सबसे बेस्ट हमारे लिए एग्जांपल है एयरपोर्ट की, मैं बन ठन के जाऊँ, मुझे एयरपोर्ट पे यहाँ से लेकर वहाँ जाने और लॉन्जेस से इधर उधर 100 लोग भी देखेंगे, क्या मैं उनको जानती हूँ? अगर मैं 100 लोग मेरे हाथ में खूबसूरत पर्स भी देखते हैं, सोचिए आप अपने आप को ऐसे रीजनिंग किया कि मेरे हाथ में एक खूबसूरत पर्स किसी ने देखा, एक ने देखा कहेगा बहुत अच्छा, दूसरे ने देखा बहुत अच्छा, तीसरे ने देखा बहुत अच्छा, क्या मेरी मुझे पता लगेगा? दूसरी बात है अगर कोई मुझे आके बता भी दे यू हैव वेरी ब्यूटीफुल पर्स, तो मुझे क्या पता वो कौन है, क्या उसने कभी मुझे दोबारा मिलना है? तो मैं उनके लिए सारी क्यों अटकी रहूँ, चोर को भी दिखा दूँ मेरे हाथ में इतना प्यारा पर्स है वो आके चोरी करेगा, बात समझ रहे हैं? अल्लाह कितने हादसे सिर्फ इसलिए होते हैं आपको पता है, शो ऑफ की वजह से। अल्लाह अकबर अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بات کیا کر رہے تھے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے خود کو مشکل میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ایک تو دیکھیں شو آف ہوتا ہے. اگر آپ بہت ہیل والا جوتا پہن کر اچھے ہار حلیے میں باہر جاتے ہیں, 10 لوگ کیا 100 بھی آپ کو اچھا کہہ لیں گے, آپ کو کیا فرق پڑا؟ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے, آپ ان کی وجہ سے, وہ دیکھیں ایک ڈھیلے ڈھالے سافٹ کپڑوں میں بندہ ایزی فیل کرتا ہے, خاص طور پہ سفر میں. اور دوسری طرف آپ اگر بہت بھی اسپیسیفکیٹیڈ قسم کے ڈریس اپ ہو کے جائیں گے, آپ تھکیں گے زیادہ, آپ کی وہ چیزیں بھی خراب ہوں گی. بعض لوگ ایک دفعہ پہنتے ہیں چیز پرانی لگتی ہے, بعض 10 دفعہ پہنتے نہیں لگتی, وجہ کہ آپ نے اس کو پہننی ہی تھوڑی دیر کے لیے. پھر دوسری بات آپ دیکھیے کہ جیسے مثال ہے کہ جب یہ چیز ہے نا تو یہ لیس کانفیڈنس ہونے کی علامت ہے. آپ نے کبھی گوروں کو دیکھا ہوگا یہ پلاسٹک کی وہ جوتیاں پہن کے باہر پھر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں باتھ روم میں پہنی جاتی ہے؟ از اٹ شیور؟ آپ کو بھی پتہ ہے پاکستان میں کوئی پہن کے تو جائے؟ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اب آپ نے باتوں میں بات یاد آتی ہے, ایک کسی ایسی دعوت میں ہم مدعو تھے, کسی وجہ سے بھی پاکستان کی یہ بات ہے, مت سوچیے امریکہ کی ہے, اور ہم کلوز فیملی سرکٹ دعوت لنچ ڈنر تھا, کوئی شادی ہوئی, اور اسے اگلے ہی دن دلہا دلہن سمیت قریبی لوگوں کو بلا لیا. ہم باہر سے گئے ہوتے ہیں, ہمیں خوشی خوشی لوگ ساری دعوتوں میں بلاتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے ہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے, ہمیں بھی بلا لیا. تو میری اپنی کلوز فیملی کے بھی لوگ تھے, ہم مختلف گاڑیوں میں تھے, وہ کوئی کلب تھا اور اس کا بڑا ایک نام بھی تھا, میں نہیں بتا رہی تاکہ آپ بھی پریشان نہ ہو جائیں. قصہ مختصر, جب ہم سے پہلے جو لوگ نکلے تھے وہ پہلے تھے, ہماری گاڑی رکی تو اس میں ہمارے اپنے ہی لوگوں میں کوئی تھا, تو وہ ینگ لڑکے تھے 2-3, تو وہ واپس گاڑی کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے کہا کیا ہوا, کہ ختم ہو گیا یا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ نو دے ڈیڈنٹ لیٹ اس انٹر, کیونکہ آپ نے شوز نہیں پہنے ہوئے, اور اس کلب کی شرط ہے کہ آپ نے بند کوٹ شوز, جو مردوں کے شوز ہوتے ہیں وہ انہوں نے کوئی سینڈل ٹائپ پہنی تھی. ہیں یہ کون سی جگہ؟ پہلے تو میں نے دیکھا, مجھے تو نہیں نکال دیں گے. بلیو می, وہ ان کا کلچر, ان کا ایک پروٹوکول تھا کہ ادھر اندر آنے کے لیے ڈریس اپ ہونا اور جوتے. پھر اب کیا کرو گے, گھر جائیں گے اتنی دور؟ کہتے نہیں اتنی دور نہیں جائیں گے, اب وہ قریب ایک دکان سے شوز خریدیں گے. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, ٹوٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے زندگیاں گزار دی. غنی کر لیں, ہے تو پہن لیں, نہیں ہے تو نہ صحیح, ہے تو کر لیجیے, نہیں ہے تو نہ صحیح. آپ اس لیے نہ کریں کہ ہے تو بہت شو آف کرنا ہے, نہیں ہے تو نہیں. لوگ کہتے جانا ہی نہیں شادی میں, جوڑا ہی کوئی نہیں, جو ہیں وہ سارے پرانے ہو چکے کیونکہ وہ ایک ایک دفعہ پہن لیے. اس کلچر سے نکل ہے, آزاد ہو جائیں گے. ریلیکسڈ زندگی گزارنے کا حل کیا ہے؟ غنا. ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیں, بالکل کسی چیز کو دیکھے نہ. اور ایک بات یاد رکھیے, روپے پیسے سے بندہ امیر نہیں ہوتا. کیسے ہوتا ہے؟ بخاری کی روایت 6446, لیس الغنا عن کثرۃ الارض ولکن الغنا غنا النفس. امیری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو, بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو. اور اس کی 10 مثالیں تو میں آپ کو پریکٹیکلی جو میں نے ارد گرد دیکھی ہوں گی نا, وہ بتا سکتی ہوں کہ جن کے گھر میں یقین کریں ایک ہفتے کا بھی کھانا نہیں ہوتا پورا, شاید گوشت ہفتے میں ایک دن پکاتے ہوں گے. آپ ان کے گھر جا کے تو دیکھیے, وہ آپ کے آگے شاید پورے مہینے کا کٹھا لے کے آگے کھلائیں گے اور پورا مہینہ دال کھائیں گے. ایسے بھی رشتے دار ہیں آپ لوگوں کے ہمارے, ان کا دل ہوتا ہے کھا لیں کھا لیں, کبھی آئیں گے یہ نہیں یہ, اور فیل کیا کریں گے, روز پکتا ہے, روز کھاتے ہیں. اور کبھی ایسے بھی ہیں کہ جن کے فریج بند نہیں ہوتے, واللہ ہی جن کی پینٹریز باہر تک پٹک پک رہی ہیں لیکن دل گھٹے ہوئے ہیں, دل تنگ ہے. ان کی جان پہ بن جاتی ہے اگر کسی کو کچھ دینا کھلانا پڑ جائے. تو یاد رکھیے, مال زیادہ ہونے سے امیری نہیں ہے, غنا غنی, اس کو درویشی کہتے ہیں. کل ایک جملہ پڑھا تھا نا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا, مجھے کئی دفعہ یاد ہے, دولت مند درویش. یہ لکھیے ادھر غنا پہ, دولت مند درویش ہے. ٹوٹی جوتی میں لے جاؤ, یو این او میں چلے جائیں گے, کچھ نہیں کوئی کہتا. پھٹا ہوا اگر دوپٹہ تو کس نے کیا کہنا ہے آپ کو. پیوند لگے تھے حضرت علی, عمر کے 17 پیوند تھے ان کے جسم کے کپڑوں پہ جس وقت وہ فاتح بیت المقدس بن کر داخل ہوئے. ہم ہوتے تو تیاریوں میں لگ جاتے, ہے تو پہن لیجئے, منع بھی نہیں ہے, لیکن نہیں ہے تو نہ صحیح. कुछ जो मिलता है पहन ले, उसको उससे जोड़ ले, वैसी फैशन होगा। एक नीली जुराब है, एक सब्बा से पहन ले, नया फैशन दो रंगों की जुराबें पहनने का। लोग तो कॉन्फिडेंस, मैं कहती हूँ कितना कॉन्फिडेंस है ऐसे लोगों का जो फैशन इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो ट्रेंड चेंज करते हैं। पहली दफ़ा वो पहन के निकलते हैं लंबी कमीजों में छोटी कमीज, कॉन्फिडेंस है। आपको मुझे क्यों नहीं है? तो लिहाजा इन चीज़ों को डिस्कस करना छोड़ दें, फिर आप देखिए करें क्या, फिर मसला क्या। अब इतनी प्यारी हदीस है इस वक्त सामने मेरे कि अगर मैं आप तक बयान कर दूँ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम सबको ही फ़ायदा होगा। अबू हुरैरा रावी हैं, तिर्मिज़ी से रिवायत 2466। सुबहान अल्लाह, हदीस कुदसी है तो लफ्ज़ भी पढ़ देती हूँ। इन अल्लाह ताला यकूल, अल्लाह ताला फरमाता है, यबना आदम, ए आदम के बेटे, तफर्रग ली इबादती, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जा, अमला सदरका गिनन, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूँगा, व असुद्द फ़क्रक, और तेरी मोहताजी दूर कर दूँगा, व इल्ला तफल, और अगर तूने ऐसा ना किया, यानी मेरी इबादत के लिए ख़ुद को फारिग ना किया, जो अक्सर नहीं कर पाते मजबूरियों के नाम पे, और इबादत में हर इबादत है, आप सब जानते हैं, नमाजें कज़ा हैं तो दीन पीछे तो कुछ भी, कहा अगर तू ये नहीं करता तो सज़ा क्या दूंगा, मला तू यदई का शोगलन, तेरे हाथों को, दोनों हाथों को, बल्कि यदई का लफ्ज़ है, तेरे दोनों हाथों को कामों से भर दूंगा। फिर क्या बोलेगा तू सारा दिन? टाइम नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता, और वलम असुद्द फ़क्रक, और तुझसे मुख्ताजी दूर ना करूँगा। क्या आज की सोसाइटीज़ की अमली तस्वीर नहीं है? टाइम नहीं, मसरूफ़ पड़े हैं, हफ्ते में एक दिन, उफ़ दो दिन, टू मच, थ्री डेज इम्पॉसिबल, फोर डेज ज़ुल्म, फाइव डेज जहालत, और पता नहीं क्या कुछ, और दुनिया दोनों हाथों से कमाने के बावजूद भी पूरी नहीं पड़ रही। एक कमा रहा था, अब चार कमा रहे हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ रही। तो ये है खुश रहने का ज़रिया, क्या करें? इबादत के लिए फारिग हो, नमाज से पहले सब बंद, टैक्सी रुक जाए, दुकान बंद हो जाए, आप अपना चूल्हा बंद कर दें, नमाज का वक्त तो नमाज है, अल्लाह आपका दिल गिना से भर देगा इंशाअल्लाह ताला, और मुख्ताजी दूर होगी। अब सवाल पैदा होता है कि कितनी को दौलत हो कि आप किसी को अमीर कह सकते हैं? तो लिख लीजिए सही मुस्लिम 2426, अमर बिन अब्दुल्ला बिन अमर से ये रिवायत है, सुबहान अल्लाह, कदफ़ लहा, बेशक फ़लाह पा गया। और आप जानते हैं फ़लाह दुनिया और आखरत की कामयाबी को कहते हैं। कौन मुकम्मल तौर पर कामयाब है दुनिया और आखरत में? नंबर एक, मन असलमा, जो मुसलमान हो गया, पहला दर्जा, इस्लाम कबूल किया, वारुज़िका किफाफा, सॉरी वारुज़िका कफाफन, जिसे बकदरे ज़रूरत रिस्क दिया गया, सिर्फ किफ़ायत का, यानी रोटी के वक्त में रोटी मिल गई, कपड़े चाहिए थे तो कपड़े मिल गए, वक़न्नहुल्लाहु बिमा आताहु, और जो इसे अल्लाह ने दिया इस पर उसने क़नात की। हम इसको क्या कहेंगे भला? मिस्कीन, बेचारा, ओहो, सिली पुल, और पता नहीं पुअर मैन, हाय बेचारे की पूरी नहीं। हमारे अपने बहन भाइयों में कोई ऐसा तो हम कहते हैं हाय बेचारों की पूरी पूरी है, बस गुजारा ही हो रहा है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं फलाह पा गया वो शख्स। याद रखे, बड़ी बड़ी जब अकाउंटिंग्स करनी पड़ती हैं तो उसमें जान तो लगती है ना, कितना कुछ इंसान का पीछे चला जाता है। और अगली हदीस भी बहुत प्यारी है, अल्लाह अकबर, ये सारी हदीसें आप किताबु ज़ोहद में जाकर किसी किताब में भी पढ़ लीजिए हदीस की, 4141 इब्ने माजा, मन असबहा मिनकुम मुआफ़म फ़ी जसदिही, तुम में से जो कोई जिस्म की आफियत के साथ, आमिनम फ़ी सिरबिही, घर में अमन के साथ सुबह करे, इंदहु कूतु यौमिही, इसके पास एक दिन का खाना हो, फकन्नमा हीज़त लहु दुनिया, तो गोया सारी दुनिया उसके लिए इकट्ठी हो गई है। अब बात करें कितने गरीब हैं फिर दुनिया में? हम गरीब हैं? हम कल्लाश हैं? मैं कहती हूँ अगली सारी ज़िंदगी कुछ ना कमाए ना, फिर भी बहुत है। एक जोड़ा ना बनाए अगली ज़िंदगी में, मरने तक के लिए पूरा, बस एक ही जोड़ा चाहिए होगा हमारे लिए, अब इसके बाद जो लाजिम हो जाएगा। और अगर हम कुछ ना और करें तो हमारे पास नस्ल दर नस्ल के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके बावजूद दिल दुखी, हाय काम नहीं चला, हाय डॉलर चला गया, हाय करेंसी डूब गई, हाय गोल्ड ऊपर चला गया, हाय हाय हाय। वो करोड़ों के जो खेत खाते में है ना, वो ज़्यादा रोते हैं, जेब में 1 रुपया नहीं होगा और फाइलों में उनके पास अरबों रुपए होंगे इस वक्त। अब लाख तो लफ्ज़ ही बड़ा छोटा हो गया, आपको था पाकिस्तान में लाख का लफ्ज़ कितना छोटा हो गया। एक माँ है, हम खुद उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, वो जब भी किसी को दुआ देती थी ना तो अपने बच्चों को, हमें सबको कहती हैं अल्लाह तुम पे करोड़ों रहमतें करें, तब उनके बेटे क्या कहते हैं, अम्मा करोड़ छोटा हो गया है, अब अरबों कहा करो, अब करोड़ों से कुछ नहीं होता, अब हमें अरबों की दुआएं दिया करो। सच्ची बात है, अब तो करोड़ ऐसे खेल है पाकिस्तान में, करोड़ के आपके शायद 100,000 की ज़्यादा वैल्यू हो जो पाकिस्तान में करोड़ की, एक 5 मरले का घर नहीं आता अब इतने में, और फिर लोग रोते हैं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं सिर्फ जिस्म आफियत, सोचे आज सुबह उठे तो आफियत थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह अमन था घर में, अल्लाह का शुक्र है। आज रात तक का खाना बनाए होंगे आप में से बहुत सारे, माशाल्लाह ख्वातीन बना लेती हैं ऐसे खाने, तो आफियत में है आप, तो आपके पास तो सारी दुनिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं मेरे पास ये नहीं तो वो नहीं है। हम कितने नाशुक्रे लोग हैं, हम कितने नाशुक्रे लोग हैं। और मैं उन लोगों को जानती हूँ, 1 डॉलर जेब में नहीं होगा, पूरी दुनिया फिर लेंगे, सारे मॉल से फिर आए, किसी चीज़ की ज़रूरत ही कोई नहीं, जब लेना ही कुछ नहीं तो रख के लेके जाना क्या है, याद भी नहीं होगा जेब में कुछ है कि नहीं, वजह कि गिना है। और अगर हर ख्वाहिश पे दम निकले और बड़े निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले तो कभी पूरी नहीं होगी। ये क्रेडिट कार्ड कल्चर ने भी तो इंसानों को रोगी कर दिया ना, जे पल्ले नहीं मेल दे, क्या कहते हैं, पल्ले नहीं धेला कर दी मेला मेला, ये जिनको पंजाबी नहीं आती उनसे माजरत है, कहते जेब में 1 रुपये 1 पैनी भी नहीं है और मेले के नाम पे है कि मेले में जाना है, मेले जाके करना क्या, पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं है। कुछ लोगों का ये भी हाल होता है। चलिए अगली, खुश रहने का राज कैसे आता है गिना, इसका इलाज क्या है। तिर्मिज़ी की रिवायत 2513 अबू हुरैरा से है, उन्ज़ुरु इला मन हुवा असफला मिनकुम, उसको देखो जो तुमसे कम दर्जे में है दुनिया के माल और असबाब से, वला तंज़ुरु इला मन हुवा फौकाकुम, और उनकी तरफ मत देखो जो माल और दौलत में तुमसे बढ़कर हों, क्यों, फइन्नहु अजदरु अल्ला तसदरु नेमतल्लाहि अलैकुम, इस तरह ज़्यादा लायक है कि फिर तुम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी न करो जो इसकी तरफ से तुम पर हुई हैं। बात समझे, दुनियावी मामलों में अपने से नीचे को देखिए और दीन के मामले में अपने से ऊपर को देखें। और एक्चुअली हम क्या करते हैं बाय द वे, ऑपोजिट कुछ तो कर रहे हैं ना, वो देखो फलां वो तुझे भी नहीं करता हाँ, और दुनिया के मामले में क्या ताने देते हैं घर वालों को, फलां को देखे फलां को देखे उसको देखे, कभी खुद को भी तो हम देखें। तो राजी रही अपनी ज़िंदगी से। फिर इसी तरह बुखारी की रिवायत है 6490 अबू हुरैरा से, इज़ा नज़र अहदुकुम इला मन फुद्दिल अलैहि फिल माल वल खल्क, जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसे आदमी को देखे जो माल और शक्लो सूरत में इससे बढ़कर है, देखा है कभी, आप कहेंगे हर दूसरा हमसे बढ़ गई है हुँ? जब कभी देखो तो क्या करो, फल यंजुर इला मन हुवा असफल मिन्हु मिम्मन फुद्दिल अलैहि, तो उस वक्त किसी ऐसे शख्स की तरफ देहान करना चाहिए जो इससे कम दर्जा है और उसे उस पर फजीलत दी गई। बिलाल के पास क्या था, शक्ल भी नहीं थी अच्छी हमारे गुमान में, अल्लाह को तो हर शक्ल ही अच्छी लगती है, दौलत भी नहीं थी, गुलाम भी थे, काबे की छत पे खड़े होकर अजान देने का शर्फ ले गए। तो ये देखिए कि अल्लाह ने फजीलत किस चीज़ में दी है। और सही मुस्लिम 2424 अबू सईद खुदरी से, अंसार के चंद लोगों ने नबी सल्लम से कुछ मांगा तो आपने इनको दे दिया, उन्होंने फिर मांगा आपने इनको दिया, यहाँ तक कि जब सब कुछ ख़त्म हो गया जो आपके पास था तो फरमाया मेरे पास जो कुछ होता मैं इसको हरगिज़ तुमसे बचा कर ना रखता, मैं तुमसे बचा कर ना रखता, लेकिन जो सवाल से बचे अल्लाह उसे बचाता है, और जो अपने दिल को बेपरवाह रखे अल्लाह इसको बेपरवाह कर देता है। ये है असल बात, ये आपने चूज़ करना है, गिना मांगेंगे गिना मिलेगा, और जो कोई सब्र की आदत डाले तो अल्लाह उसे सब्र दे देता है, और कोई सब्र से ज़्यादा बेहतर और कुशादगी नहीं पाता। तो क्या मांगना है अल्लाह से आज के बाद, गिना आ जाए ठीक है, नहीं आती ना सही, बहुत लंबी लटक ना रखिए, और यकीन करें कि इससे आपकी ज़िंदगी खुशगवार होगी, अच्छे से अच्छा मामला होगा। कोई क्वेश्चन इससे मुतल्लिक है ज़हन में, जी केयर फ्री कह दीजिए अपने आप को, रिलैक्स्ड, डोंट कम्पीट, दूसरों से तकाबुल ना करें, जी आप कंटेंटमेंट, बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी जी चीज सही है, अच्छी है, खुश हो। हदीस में कि किसी मुसलमान के पास कोई नेमत देखें, उसको माशाल्लाह कहें, बारक अल्लाह कहें, खुशी का इजहार करें, बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी दुआ दें, अच्छी बात है। लेकिन ये जो है ना, वो जो राल टपकने वाली कैफियत और शोखी में आ जाना, ये नहीं चाहिए। और अगले को फिर ख़ास तौर पर जैसे कि बात करें कि गलत मीन से कोई चीज़ है, आप टोके भी ना, ये सब कहाँ से आया है। लोग कहते हैं आपको क्या पता ये बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आती हैं, फिर कंपनियों से आती और कहां से आएंगी। लेकिन आप शक भी ना करें किसी पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों के जाहिर पे क्यास करो, जो लोग सामने करते हैं वही मामले पे रखो। ठीक है, चलिए, बच्चों पे शफकत करनी चाहिए। एक जुमला ही लिख के आगे चले जाते हैं, बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। आप देखिए कि बड़ों के साथ, अपने बराबर के लोगों के साथ मामला करना आसान होता है। बच्चे चूंकि आगे से फौरन आपको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, आपकी तारीफ नहीं करते, तो बस लोग फिर बच्चों के साथ मामला वैसे नहीं करते जैसा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत थी कि बड़ों के साथ साथ वो बच्चों से भी अच्छा मामला करते थे। छोटे बच्चे ख़ास तौर पे जो आगे से किसी दूसरे को बल्कि बता भी नहीं पाते, जब ज़िंदगी में ये असूल होगा ना कि मैंने किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी के लिए कुछ नहीं करना बल्कि अपने लिए करना है, तो बच्चों के साथ मामला करना आसान होगा। नबी सल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि जिससे पता चलता है कि आप छोटे बच्चों से शफकत करते थे। कुरान इसके बारे में क्या कहता है? सबसे पहला हक, इन बच्चों को जीने का हक दो। कैसे? सूरत अलानाम 151, वला तक्तुलु औलादकुम मिन इमलाक नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उनको भी देंगे। तो बच्चों को इबॉर्ड करवा देना ये बच्चों से शफकत के खिलाफ है। फिर सही मुस्लिम की रिवायत 6052, जाबिर बिन समूरा से कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के साथ जोहर की नमाज़ पढ़ी, आप घर जाने को निकले, मैं भी साथ निकला, सामने से कुछ बच्चे आए, आपने हर एक के रुखसारों पर एक एक करके हाथ फेरा। देखिए, बाज़ हम समझते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलता, हालांकि बच्चों को पता चलता है, वो खेल रहे हैं और आप एक एक को बुलाकर हाथ फेर रहे हैं। जाबिर ने कहा कि जहाँ तक मैं हूँ आपने मेरे रुखसार पर भी हाथ फेरा, मैंने आपके हाथ की वो ठंडक या खुशबू पाई जैसे खुशबू सांस के डब्बे में से हाथ निकला हो। तो क्या पता चला, बच्चों से प्यार कीजिए। जहाँ कोई बच्चा, बड़ों को तुम देख के देखे ना, आप किसी बड़े के पास से गुजरें और ऐसे गुजर जाएं, और हालांकि वो आपको जानती हो, आपकी सलाम दुआ, तो उसको बुरा लगेगा ना। बच्चों को बड़ा समझें। अब वो बच्चा किसी से बात, बाद लोग फ़ोन रहे, बच्चा अम्मी को बुलाओ, नहीं पूछिए बेटा क्या हाल है आपका। और छोटे क्या, फिर बड़े होते बच्चों को तो और ज़्यादा पूछना चाहिए। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं नबी सल्लम के बारे में, अबू दाऊद की रिवायत है 5217, कहती हैं कि मैंने आदत, वज़ा और चाल में हज़रत फ़ातिमा की नस्बत रसूलुल्लाह से मुशाबे किसी को नहीं देखा, यानी ये सबसे ज़्यादा आपसे मिलती थी। और इसी तरह से जब वो नबी सल्लम के पास आती तो बच्ची थी ना, आप खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़ते, इनको प्यार करते और अपनी जगह बिठाते। इसी तरह जब फातिमा के पास आप जाते नबी सल्लम, तो वो खड़ी हो जाती, आपका हाथ पकड़ती और आपको प्यार करती और अपनी जगह बिठाती। तो आप अपनी बेटी से भी इतना प्यार करते थे, यहाँ से ये मिलता है। इसी तरह आपने एक वाक्य सुना होगा, उम्मे सुलैम का एक बेटा था अबा उमर, तो उनकी चिड़िया बीमार हो गई और फिर वो मर गई। तो अल्लाह के नबी एक मौके पे उसके पास गए, हज़रत अनस बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी हम बच्चों से दिल लगी करते थे, बच्चों में जैसे आप कहते हैं ना बच्चा बन जाना। कैसे? यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई से आप फरमाते, या अबा उमैर, ए अबा उमैर, मा फ़अल नुगैर, तेरी नुगैर ने क्या किया। नुगैर चिड़िया को कहते हैं। यानी छोटे बच्चों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बुरी बात नहीं है कि आप उनको कुछ टाइम दें। फिर इस तरह बुखारी की रिवायत है 77 किताबुल इल्म, महमूद बिन रबी कहते हैं कि मुझे याद है एक मरतबा नबी सल्लम ने डोल से मुंह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर फेंका और मैं उस वक़्त 5 साल का था। तो आप बच्चों में इंटरेस्ट लेते थे, लेना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल बच्चों को देख के खुश नहीं होते, घूरते ही रहते हैं, ये नहीं अच्छा तरीका था। बच्चों से प्यार कीजिए, और जो गुदाज आपको बच्चों में मिलेगा और जो नरमी, और आप एक कैंडी तो लेकर देखें, टिप टिप करते मोटे आंसू, जैसे आपने उनकी जायदाद अपने नाम लगा ली। जल्दी खुश, जल्दी रूठते हैं। कहते हैं ना कि बच्चों में 10 बातें ऐसी होती हैं, अगर बड़ों में आ जाएं तो वो दरवेश हैं। उसमें यही कुछ है, छोटी सी बात पे खुश, छोटी पे नाराज, और दिल में बात नहीं रखते। जितना खाया उसके बाद उनको परवाह नहीं कि अब रात को खाएंगे और कल खाएंगे, वो देखी जाएगी। यानी बच्चे बहुत फितरत के करीब होते हैं, और ख़ास तौर पर न्यू बॉर्न बेबी। मुझे तो ऐसे लगता है अल्लाह के पास से हो के आया, ज़रा इसे हाल चाल पूछ लो। अब वो बोल नहीं सकता बेचारा, लेकिन बच्चों को देख कर फीलिंग आती है कि ये बिल्कुल अल्लाह ताला के करीब है। और रिवायत है बुखारी की 3749, हज़रत बरा से कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को देखा कि हसन बिन अली आपके कंधे मुबारक पर थे, और आप फरमा रहे थे, अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है, तू भी इससे मोहब्बत रख। आप अपने बच्चों को कहें, अल्लाह मुझे अपने बच्चे से बड़ा प्यार है, तू भी इससे प्यार कर। देखिए माओं की दुआएं रंग लाती हैं, बापों की, नानियों की, दादियों की। तो आज के बाद जब अपने घर के बच्चों से प्यार करें तो आप भी ये कहा करें कि अल्लाह मुझे ये बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, तू भी इससे प्यार कर। कई दफ़ा ये दुआएं कबूल हो जाती हैं और बंदे को अंदाज़ा भी नहीं होता। फिर इसी तरह से हज़रत नुमान बिन बशीर कहते हैं, मिंबर पर थे, कहने लगे मेरे बाप ने मुझे एक तोहफ़ा दिया। तो अमरा बिनत रवाहा जो इनकी माँ थी, उन्होंने कहा कि जब तक अल्लाह के नबी को इस पर गवाह ना बनाए मैं राज़ी नहीं हो सकती। चुनाचे वो गए और अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी को कहा कि मैंने अपने इस बच्चे को ये तोहफ़ा दिया। तो आपने कहा क्या सबको दिया, बाकी बच्चों को भी दिया? कहा नहीं। तो आपने फरमाया अल्लाह से डरो और अपने बच्चों के दरमियान औलाद में इंसाफ रखो। फिर वो वापस गए, अपना तोहफ़ा वापस लिया, फिर जब हुआ होगा तो सारे बच्चों को एक जैसा दिया होगा। तो क्या पता चला कि नबी सल्लम बच्चों में इंटरेस्ट लेते थे। तो आपके लिए, मेरे लिए जो सबसे अहम बात है इसमें क्या है कि बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। आज बच्चों से प्यार मोहब्बत और उनकी तरबियत के अंदर बहुत कमी आ गई। चंद जुमले सिर्फ इस सोच से बोलती हूँ, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, और ना भी होगा तो खैर ख्वाही तो यही है। आज हम देखें बच्चों से शफकत से ज़्यादा हम बच्चों को नवाजते हैं। बिलीव मी, आप एक मुसलमान माँ हैं, बाप हैं, आप घर में आपके बच्चे हैं, दादी हैं, दादा, वट एवर जो भी हैं, आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे के दिल में दुनिया ना भरे, यही चाहते हैं ना आफ्टरऑल, और उसका दिल आखरत पे लगे। एंड पे तो हम यही चाहते हैं ना, दुनिया में शुरू से ऐसा शुरू कर दें। अगर आप अपने बच्चे के इतने कपड़े, इतने खिलौने, इतनी किताबें और जो दुनिया की चीज़ें हैं, मुझे बताइए, दुनिया तो आप उसकी इतनी बढ़ा रहे हैं और साथ ही उसको कह रहे हैं अल्हाक मुत्तका सुरहत्ता जरतुमुल मकाबिर, दुरुस्त नहीं होगा। नपातुल्ला पाले, बच्चे का नहीं कोई लाड होता, उसको कुछ नहीं चाहिए। अक्सर मैं किसी की बात कोट करती हूँ, कहते हैं बच्चे को सिर्फ दूध चाहिए होता है, ये जो कुछ आप दूसरों को गिफ्ट्स में देते हैं ये माँ को चाहिए होता है। कौन सा बच्चा कहता है कि मुझे मैचिंग बिप पहनाओ, वो तो कहते मुझे बिप पहनाओ ही ना। कौन सा बच्चा लड़का है वो कहता है अगर आपने मुझे पिंक कपड़े पहना दिए तो आपने मेरी इंसल्ट कर दी। ये ब्लू और पिंक का कॉन्सेप्ट किसका है? हमारा। बच्चे को मुनासिब, मैं कहती हूँ ये छुरी चलानी पड़ती है अपने दिल पे। तरबियत की पहली छुरी ये है कि आपका घर बच्चों वाला घर लगे ही ना। आपने अपनी नानियों दादियों से सुना होगा, हमने भी कुछ ऐसी ही बातें सुनी है। बच्चा पैदा हो जाता था, कपड़े नहीं होते थे, शर्माने की वजह से झबले सीते थे कि लड़का हो गया तो भी ठीक है, लड़की होगी तो भी ठीक है, और उसको छुपाते थे ये गुड़िया के कपड़े। पता नहीं कितने झूठ बोलते थे दूसरे बच्चों के सामने, लेकिन छुपा छुपू के रखते थे। ऐसे ही था ना जी, आप मेरी तस्दीक कर रहे हैं इस हॉल में, बाकी तो सब बैकवर्ड कहेंगे। जब पता जो चल गया अल्ट्रासाउंड से बेटा है तो फिर क्यों ना खरीदें, और फिर इतने हाल हुलिए में ऐसे में जाके औरतें शॉपिंग करती। बच्चे के आने से पहले आप पूरा कमरा उसका सजा रहे हैं, वो कल कैसे इस दुनिया से दिल नहीं लगाएगा। और ये वाकई बड़ा मुश्किल है, दिल चाहता है। सबसे ज़्यादा बंदे को खुशी खर्च करके अपने बच्चों पे होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नहीं करना। कसम बुरसी में पाली है इनको, अगर आपने मुजाहिद बनाना है, आपने इनको दरवेश बनाना है, आपने इनको वली बनाना है, और आपने अगर इनको गनी बनाना है, नपातुल्ला रखिए। लोगों को, दोस्तों को भी कह दें मुझे ज़्यादा बच्चे के गिफ्ट ना दें, पैसे दे दें अगर किसी को बहुत शौक है अपनी पसंद, उसको तरबियत पे लगाएं। इमाम रबी का वाक्य आपने सुना होगा, जो पैसे शोहर देकर चले गए माँ ने सारे बच्चे की तरबियत पे लगा दिए। तो आज हम वो कहते हैं ना कि मिन्नतें करके तेरी हमने तुझको बिगाड़ दिया। अब इस ग्लास में मैं पी सकती हूँ तो बच्चा क्यों नहीं पी सकता? इस पर कार्टून डाल के, इसकी डंडी डाल के, ये $2 की बजाय $10 का ही होगा तो बच्चा पिएगा। और वो मुड़ी हुई चमची और प्लास्टिक की चमचियाँ, ये आपके सगन है, बच्चे को नहीं चाहिए। अपने बच्चे को इजी गोइंग पाले। और एक आखिरी बात करूं, बातें तो बहुत सारी और भी हो सकती हैं, इसको नजरों से निकाल दें। جب ہمارے بچے ہر وقت ہماری نظروں میں ہیں. نظروں سے مراد سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ دل، دماغ، سوچ، فکر. تو بچہ بگڑ جاتا ہے، پھر وہ اس کو عادت ہو جاتی ہے، اٹینشن سیکر ہو جاتا ہے. بالکل، توجہ مانگتا ہے بچہ. پہلے 10-10 بچے گھر میں پلتے تھے، سچ بتائیے. 2 سال بعد ہر نیا مہمان تیار ہے، 2 نہیں تو 2.5 سال بعد آ جاتا، 2.5-3 سال بعد آتا تھا. ایک کا دودھ فارغ تو دوسرا بچہ شروع، دوسرا آیا تو وہ پہلے بچے کو کھلانے پلانے کے قابل ہو چکا ہوتا تھا. ماں کام کرتی رہتی تھی، بچے پالتی تھی. بعض کہتے ہیں ہم بچوں کو نہلا دلا کے جہاں رکھتے تھے، تھوڑی دیر بتا کے خود ان کی سائڈ پلٹنی پڑتی تھی. اور ہماری نانی بتاتی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو اس کی یہ ہاتھ ایسے بند ہوتے تھے، اور کئی کئی دن مطلب بچے ہاتھ ایسے ہی رکھتے تھے، تو جب نہلانا تو کھولنا تو اندر میل کی لسریں ہونی، کھول کھول کے ہاتھ صاف کرتے تھے. تو آج تو کھلے ہاتھوں کے ساتھ، بلکہ ایک بچہ پیدا تو کھلی آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوا. یعنی کسی نے بتایا بھی، یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو خوف آ رہا تھا اس بچے کو دیکھ کے، پٹر پٹر آنکھ کھل کے دیکھ رہا تھا. تو بہرحال وہ کسی نے کہا کہ ایک بھی تصویر تھی کہ ماں ہے پیٹ میں بیبی ہے، اور بیبی اندر سے ٹیپ پہ لکھ رہا ہے ماما آئے موکھے، ماں کو میسج کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب اگلے دور میں بچے ماں کے پیٹ سے بھی انشاءاللہ میسیجز شروع ہو جائیں گے، اینڈ اٹ لک لائک کہ یہ ہوگا جس تیزی سے یہ سب ہو رہا ہے. تو بہرحال اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو رف اینڈ ٹف والے، ان کو پکڑ کے بس نظروں سے ہٹائیں. جتنا سخت جان بنائیں گے یہ اتنے آپ کی بھی خوشی کا ہوگا. اور ایک آخری بات، خدمت کریں نہیں ان کی، ان سے کروائیں. یہ جو شروع سے بچے کی خدمت کرنے کا کانسیپٹ ہے، اور چلے ایک سال تک کا بچہ ہے چھوٹا سا اس سوکے، لیکن ذرا بڑا ہو رہا شور ہے، آپ اس سے خدمت کرائیں. آپ کے اس کے منہ میں ڈالو، اسے کہ تم میرے منہ میں ڈالو. بچے کو خدمت کرنا سکھائیں گے انشاءاللہ پھر وہ آگے آگے ہوگا. باقی باتیں آپ میرے سے اچھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یا سننا چاہتے ہیں؟ جو بات ہوئی ہے اٹس اوکے، کوئی بری لگی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ پیمپرز پہنانے بچوں کے ساتھ ظلم ہے کہ زیادتی ہے کہ صحیح ہے؟ میاں کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، گھر کا ایک اچھا خاصا بجٹ پیمپرز پہ چلا جاتا ہے. آپ دیکھیے اپنے بچے کو ٹرین کیجئے، ہر اچھے چیز کا ٹرین کیجئے. آپ کے بچے کے ساتھ گندگی کیوں لگی رہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں پھر یہ کارپیٹ گندا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ سارا دن جو کھاتے ہیں وقت پہ کھلائیے، فارغ کیجئے بچے کو. دوبارہ کھلانے سے پہلے فارغ کرائیے، کبھی بچے گندے نہیں کریں گے، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا. تو بہرحال مجھے پتا ہے میری یہ بات بہت ساروں کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں نہیں کر رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسا ہے کہ ہمارے پاس اگلے صحابی، انشاءاللہ اب اس کو دیکھیں گے. آئیے ذرا ایکسرسائز کروائیں ان کو. میرا دل تو تھا ہم تھوڑا اور پڑھتے ہیں، اگر تھوڑا میں جلدی کر سکی تو پھر اینڈ پہ ہم دوبارہ اس کو لے لیں گے، لیکن آپ ایکسرسائز کرائیں ان کو.